الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورہ المائدہ کی آیات نمبر 11 اور 12، یہ ہم پچھلی کلاس میں شروع کر چکے تھے، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا. معارف القرآن میں جو ترجمہ تھا اس کو بھی ریفر کر لیتے ہیں، اور جو آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ہے، تو اس کو بھی جو سلائڈز آپ کے سامنے شیئر ہوئی بھی ہیں وہاں سے ہم نے ساتھ ساتھ چلایا تھا. تو اس کے بعد پھر جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ خلاصہ تفسیر ہوتی ہے معارف القرآن کے اندر. لیکن یہاں پر جو سلائیڈز میں ہمارے بھائی نعمان دانش صاحب نے یہاں پہ بنائی ہے سلائیڈز، اس کے اندر یہ ترجمے، آسان ترجمہ قرآن کے ساتھ پھر تھوڑی تھوڑی سی اس کے اندر جو تفسیر لکھی ہوتی ہے مفتی صاحب نے، وہ بھی شاید اس میں تھوڑی تھوڑی سی ہے. لیکن خلاصہ تفسیر سے اگر ہم شروع کر لیں، صفحہ نمبر 11 سلائڈز کے اوپر جو ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہوگا. نہیں، صفحہ نمبر 11 جو ہے، رائٹ، یہ خلاصہ تفسیر ہے. تو میں پھر وہیں سے معرف القرآن سے ہی پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ڈسپلیڈ ہے. تو اس میں حضرت، یہ اصل میں کیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے انہوں نے کہ از بیان القرآن، یعنی مفتی مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے خلاصہ تفسیر یہاں پہ نقل کیا جاتا ہے. معرف القرآن کا یہی طریقہ ہے. تو اس میں، اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ اے ایمان والوں، یہ ترجمہ بھی ہے، انڈر لائن جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے اور پھر بریکٹس میں تفسیر چل رہی ہوتی ہے درمیان درمیان میں. تو اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو. اذکرو، یہاں پر جو لفظ ہے ذکر، اور اس ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے اذکرو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ذکر کا معنی جو ہے وہ یاد کرنا ہے کسی چیز کو جو کہ پہلے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور معنی ذکر کا، یاد دہانی، نصیحت نامہ، جیسے کہ انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو وہاں پر بھی لفظ ذکر ہے، لیکن وہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید، جو کہ نصیحت نامہ ہے، وہ مراد ہے. یہاں پر قرآن مجید مراد نہیں ہے کہ اذکرو، کہ قرآن مجید پڑھو یا قرآن مجید کو یاد کرو، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے. تو یاد کرو نعمت اللہ، اور ظاہر ہے یہ ریفرنس ٹو کانٹیکس سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، وہاں پہ کیا مراد تھی. نعمت اللہ، اللہ تعالی کی کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، علیکم، جو تم پر ہوا ہے. اذ ہم قوم، جبکہ ایک قوم یعنی کفار قریش ابتدائے اسلام میں، جبکہ مسلمان ضعیف تھے، ٹھیک ہے، شروع میں بہت ہی سلولی جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر وہی نازل ہوئی، پھر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئیں، گھر کے اندر جو بچے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے کر کے آئے، ایک غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، اور آزاد اور बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाशऊर बाइज्जत मुआशरे के फर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर के आए। ठीक है, तो ये था टोटल इस वक्त मुसलमानों का। और फिर इसके बाद फिर एक-एक करके, वन एट अ टाइम, फिर लोग मुसलमान होते गए, हत्ता के 6 लोग मुसलमान हुए। तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जो फिजिकली भी इतने ज्यादा स्ट्रांग थे और सोशली, सॉरी, फिजिकली भी इतने ज्यादा वीक थे और सोशली भी इतने ज्यादा वीक थे कि बस वो चरवाहे थे, ऐसे लोग जो है वो मुसलमान हो रहे थे। तो बहुत ज़ौफ था, बहुत कमजोरी थी। तो उस जमाने में क्या होता था कि वो इस फिक्र में थे कि तुम पर इस तरह दस्त दराजी करें कि तुम्हारा खात्मा ही कर दें। इज हम कौमन अयब सुतू इलैकुम, क्या इस तरह आईदिया हूं, यानी अपने हाथों को तुम्हारी तरफ बढ़ाएं। ठीक है, तो तफसीरन हजरत थानवी रहमतुल्लाह क्या लिखा कि वो हाथों को क्यों बढ़ाते थे, हैंड शेक करने के लिए नहीं बढ़ाते थे, ठीक है, या सर पे हाथ फेरने के लिए नहीं बढ़ाते थे, थपकियां देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते थे, बल्कि खात्मा कर देने के लिए हाथ बढ़ाते थे। ठीक है, अब हाथ बढ़ाने का यहाँ पे मतलब भी क्या है, क्या लिटरली वो हाथ ही बढ़ाए होते थे, बल्कि नहीं, बल्कि वो ये इकदाम करते थे, ये फिक्र करते थे, ये मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, तदबीर करते थे कि तुम्हारा खात्मा ही करना, यानी इस्लाम खत्म हो जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है, क्योंकि तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, हमारे अहवाल और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, तो इस वजह से हमें इसको समझना और याद रखना इंतहाई जरूरी है कि ये लोग किसको खत्म करने के लिए तदबीर करते थे, किस चीज को यानी हाथ बढ़ाते थे। क्या नबी अलैहिस्सलाम को ये कत्ल कर देना चाहते थे? नहीं। ठीक है, ऐसी हमें कोई रवायत नहीं मिलती है जिससे ये पता चले कि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे थे। वो कत्ल का मामला जो इन्होंने किया था वो तो बिल्कुल आखिर में जाकर के हुआ था ना, 13वीं नबूवत के साल में। ठीक है, जबकि ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के नबी अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आके बैठ गए थे कि अब ये बाहर निकलेंगे तो हम सब के सब एक साथ वार करेंगे इनके ऊपर, राइट? जब इनकी सारी चीजें फेल हो गई थी, सारी तदबीरें फेल हो गई थी, तब इन्होंने डरते डरते कत्ल का मंसूबा बनाया था। ठीक है, तो अभी क्या क्या करने जा रहे थे, अभी किस चीज को खत्म करने जा रहे थे? क्या अब हदीयतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला को नाउज़ बिल्ला कत्ल करने जा रहे थे? क्या जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने जा रहे थे? अली रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने जा रहे थे? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल करने जा रहे थे? नहीं, ऐसी कोई सबूत नहीं मिलता, ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। हाँ, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तशद्दुद करते करते शहीद कर दिया था, लेकिन ये भी कुछ बाद में जाकर के हुआ था। ठीक है, और हजरत यासिर रजुल सुमैया रजतान के जो शोहर थे, यासिर रजतान के शोहर थे, बेटे के नाम तो खैर, उनके शोहर को भी जो है वो कत्ल कर दिया था इन्होंने तशद्दुद करते करते। लेकिन असल में इनका मकसूद क्या था, तशद्दुद करें कि वो इस्लाम को छोड़ दें। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि जब ये कत्ल करने का इरादा नहीं रखते थे, कत्ल करने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर ये क्या कर रहे थे, राइट? तुम्हारा खात्मा कर दें, क्या मतलब खात्मा कर दें? ठीक है, कि तुम इस दीन को छोड़ दो बस। ठीक है, दीन का खात्मा करने के लिए निकले थे, इंसानों का खात्मा करने के लिए नहीं निकले थे। ये फर्क है, इन दोनों चीजों में फर्क है। एक होता है कि दीन पर जो अमल करने वाला है उसको मार दिया जाए तो उसके नजरियात भी उसके साथ ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन एक दूसरी चीज ये होती है कि नहीं, उसको आप नहीं मारना चाहते हैं, या उसको आप नहीं मारने जा रहे हैं, आप उसके नजरियात को मारने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस जमाने में ये नजरियात को मारने की कोशिश हो रही थी, नजरियात को खत्म होने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इस्लाम है। इस्लाम क्या है? ये एक नजरिए का नाम है, ये एक सोच, एक फिक्र, एक अकीदे का नाम है। ठीक है, तो तुम्हारा खात्मा कर दें, इसका मतलब क्या था? इस्लाम का खात्मा कर दें। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों था उस जमाने में कि ये इस्लाम के खात्मे करने की तदबीरें कर रहे थे, मुसलमानों का खात्मा करने की तदबीरें नहीं कर रहे थे? उसकी वजह यही थी कि
उस वक्त जो है मुसलमान बहुत कमजोर थे और इनको ये उम्मीद लगी हुई थी कि अभी तो इब्तिदा है, अंग्रेजी का मुहावरा सबको ही पता होगा, निप द ईविल इन द बड, अभी तो ये बड में ही है, अभी ये रोज नहीं बना, अभी ये पौधा नहीं बना, अभी ये दरख्त नहीं बना, ठीक है, तो इस वक्त खत्म कर देना जो है वो बहुत आसान काम है, बाद में मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। तो यही मामला इस दौर के अंदर भी है, इस वक्त भी जो है वो इस्लाम पलट करके बिल्कुल इब्तदाई अहवाल के ही शक्ल में खड़ा हुआ है कि मुसलमान इतने कमजोर कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए हैं कि अब कुफार को मुसलमानों को कत्ल करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो इस्लाम पर है ही नहीं, वो इस्लाम पर है ही नहीं, ठीक है। चंद एक जो रह गए हैं तो उनके ऊपर मेहनत हो रही है कि ये भी जो है ना इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए हैं तो ये अभी इस्लाम के ऊपर, लेकिन इतने कमजोर हो गए हैं कि इनके अंदर से इस्लाम को निकाल लेना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। बहुत आसान हो गया है, जब इनके अकायद बस हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, तो फिर इस्लाम ठीक है, यहां पर 21वीं सदी के इस मोड़ के ऊपर पहुंच करके दुनिया में एग्जैक्टली यही मसला खड़ा हो, बिल्कुल पूरा का पूरा जो है ना वो सर्कल घूम करके वापस जो है वो बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर आ चुका है। काश कि हमें ये समझ में आ जाए, हम तो इस्लाम को दुनिया में छाता हुआ तस्वुर कर रहे हैं इस वक्त, दुनिया में गालिब आ चुका है इस्लाम, अब तो एक और जगह गालिब आ गया ना, कहाँ पे गालिब आया किसी को पता है? अब इस्लाम जो है वो एक और जगह गालिब आ गया है, कौन सी जगह भाई? बड़ा ढोल पीट पीट करके उसका ऐलान किया जा रहा है, और उसके ऊपर बड़े बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, और उसके ऊपर बड़े बड़े जो है वो क्या कहते हैं, मैसेजेस तो नहीं, वो क्या कहते हैं, पॉडकास्ट बना बना करके। कहाँ इस्लाम गालिब आ गया इस वक्त? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, ठीक है ना, न्यूयॉर्क सिटी में इस्लाम गालिब आ गया, और उसके ऊपर इतना शोर मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, पहले उनके आने से पहले शोर मचाया, अब आने के बाद शोर मचा रहे हैं, बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ पहले से तय था, ठीक है। तो ये जो है ना ये धोखा है, इसको दजल कहते हैं, ये इस्लाम इस्लाम कोई गालिब नहीं आया, ठीक है, बल्कि जिस जब मस्ख कर दिया जाता है ना किसी चीज को, तो फिर वो इस्लाम नहीं रहता, फिर वो इस्लाम नहीं रहता, फिर वो कुछ और बन चुका है, जिसको कि आपके बोलने से वो इस्लाम नहीं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रटे जा रहे हैं, रट रट करके लोगों को जो है वो कायल करे चले जाने, जाहिर से पहले से ही लोग कायल हैं कि यहाँ भी यही इस्लाम होता है, तो उनको तो बस एक फुलंतुरु देने की जरूरत थी, वो फुलंतुरु उनको और मिल गया, एक और मिल गया भाई, ठीक है, तो चल रहे हैं भाई। बहरहाल तो फरमाते हैं कि जबकि मुसलमान ज़ईफ़ थे, तो वो लोग यानी काफिर इस फिक्र में थे कि तुम पर इस तरह दस्त दराजी करें कि तुम्हारा खात्मा ही कर दें, सो अल्लाह ताला ने उनका काबू तुम पर इस कदर नहीं चलने दिया, ठीक है, यानी फकफ़ा एदियहुम अनकुम, उनका काबू तुम पर इस कदर नहीं चलने दिया कि वो तुमको खत्म कर दें, तुम्हारे अकायद को खत्म कर दें, और आखिर में तुमको गालिब कर दिया, ये तफसीरन है, ये तर्जुमा नहीं है, ब्रैकेट्स में तो तफसीर है कि और आखिर में तुमको गालिब कर दिया बस उस नेमत पे आ, कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया, ठीक है, और वह और इत्तकुल्लाह के अहकाम के इम्तिसाल में अल्लाह ताला से डरो, इम्तिसाल का मतलब पीछे भी हमने पढ़ा था फरमा बरदारी, हुक्म को मानना, ठीक है, और हुक्म के ऊपर अमल करना, इसको इम्तिसाल कहते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला से डरो कि भाई अल्लाह ताला का यही तुमसे तकाजा है कि मेरे हुक्मों को मानो, ठीक है, तो इस नेमत का शुक्र ये है, का ये शुक्रिया है, देखें वही बात जो सूरह अनाम के अंदर चल रही है, ठीक है, कि अल्लाह के हुक्मों को मानना यही शुक्रिया है, ठीक है, यही शुक्रिया है अल्लाह ताला का, यही शुक्र है, और अगर अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहे, ठीक है, यानी ये कह रहे हो कि नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है, या अल्लाह के हुक्म की कोई हैसियत नहीं है, या अल्लाह के हुक्म को ना मानने से कुछ नहीं होता। अगर तुम ये कर रहे हो तो फिर तुम 10,000 नहीं 1,00,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ते रहो, तस्बीहात फेरते रहो, ठीक है, या शुक्रुन लिल्लाह पढ़ते रहो। ये शुक्र नहीं है, ये शुक्र नहीं है। शुक्र तो है अल्लाह के हुक्मों का मानना, ठीक है, वो इस नेमत का शुक्र ये है। और आइंदा भी अहले ईमान को हक तआला पर एतमाद रखना चाहिए, वअला अल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिन, अल्लाह ताला पर एतमाद रखा कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत फरमाई, ठीक है। तो हिफाजत कहाँ से हुई? हिफाजत असबाब से नहीं हुई, क्योंकि असबाब तो थे ही नहीं ना इनके पास, कोई हिफाजत करने वाले कमजोर थे इंतहाई, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं ये नेमतें कि देखो बगैर असबाब के भी मैंने तुम्हारी हिफाजत फरमाई है। असबाब को इख्तियार बेशक तुम करो जब तुम कर सकते हो, शरीयत के दायरे में रहते हुए, राइट, शरीयत के दायरे में रहते, मेरे हुक्मों के दायरे में रहते हुए तुम असबाब जरूर इख्तियार करो, लेकिन असबाब को इख्तियार करने की वजह से तुम मुझे भूल ना जाओ, ठीक है। और जैसे आज सुबह को खवातीन की क्लास के अंदर भी एग्जैक्टली ये बात हुई है कि अल्लाह को भूल जाने का मतलब हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के मौजूदगी की तरफ ध्यान नहीं किया कि अल्लाह भी तो मौजूद है। नहीं, अल्लाह ताला को भूलने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की तरफ जहन नहीं जा रहा, अल्लाह ताला की तरफ थॉट नहीं जा रहा, नहीं, बल्कि अल्लाह को भूलने के अंदर ये भी शामिल है कि अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं, ये भी गफलत है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि असबाब नाजायज इख्तियार कर रहे हैं, झूठ, धोखा, फरेब, बेपर्दगी, राइट, इस तरह के असबाब इख्तियार कर रहे हैं, और साथ साथ ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ए अल्लाह तू सबसे अच्छा है, लेकिन असबाब क्या इख्तियार कर रहे हैं? अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी वाले असबाब इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को बजाहिर याद भी कर रहे हैं, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, राइट, अल्लाह अकबर के नारे भी मार रहे हैं। तो भैया आप भी बड़ा याद कर रहे हैं यार अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला को याद तो कर रहे हैं, भूला को थोड़ी अल्लाह ताला को, नहीं, ये अल्लाह अकबर का नारा जो है ये अल्लाह ताला को याद करना नहीं, अल्लाह अकबर का नारा मारना ये अल्लाह को याद करना नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं और बगैर एहसास नदामत के, ये भी एक ऐड कर लें इसके अंदर, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी अगर एहसास नदामत के साथ भी करें ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये हुक्म है मुझसे इस पे अमल नहीं हो रहा, इसको एहसास नदामत कहते हैं। तो एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना कि अल्लाह का हुक्म है, मुझसे उस पे अमल नहीं हो रहा, मैं गलत कर रहा हूं, इसको एहसास नदामत कहते हैं। आखिरी दर्जा ये है, ठीक है, अगर एहसास से नदामत खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि आप उसको अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, ठीक है, आप उसको अल्लाह का हुक्म मानते ही नहीं। अब आप जो कर रहे हैं ये गफलत है, ये अल्लाह को भूल जाना है, ठीक है। तो अजवाब इख्तियार करने की शराइत होती है, ऐसे नहीं कि जी अजवाब इख्तियार करने का हुक्म है तो इस वजह से मैं अजवाब इख्तियार कर रहा हूं, नहीं, अल्लाह ताला को भूल करके अजवाब इख्तियार करना जायज नहीं है। وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. جزاكم الله خيرا. تو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے نا کہ اللہ کے اوپر ہی ایمان والے توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اعتماد سے مراد اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے توکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا ہے اعتماد کرنا نبی علیہ السلام کے اوپر، اعتماد کرنا، تو نبی علیہ السلام کے اوپر جب اعتماد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے توکل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی زبان کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام مدد فرمائیں گے یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام پر اعتماد کرو یعنی نبی علیہ السلام مدد فرمائیں گے، نہیں، بلکہ مدد کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے توکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، और नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद का मतलब है ईमान लेकर के आना कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया अल्लाह के बारे में, आखरत के बारे में, फरिश्तों के बारे में और कदर के बारे में और किताबों के बारे में और नबियों के बारे में, सब का सब सच है, कोई इसके अंदर डाउट की गुंजाइश ही कोई नहीं, ठीक है। और अल्लाह ताला को राजी करने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसको छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता जिससे कि अल्लाह तक पहुंचा जा सके। ये नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद है, इसको अरबी में तवक्कुल नहीं कहते, इसको ईमान कहते हैं, ठीक है। तो उर्दू का तो लफ्ज एतमाद है लेकिन वहां पे अलग एतमाद का मतलब, यहाँ पे अलग एतमाद का। तो अहले ईमान को हक ताला पर एतमाद रखना चाहिए, यानी मदद की तवक्को अल्लाह ही से रखनी चाहिए, जिसने पहले भी तुम्हारे सारे काम बनाए हैं, आइंदा भी आखरत तक उम्मीद रखो, इत्तकुल्लाह में खौफ, आखरत तक यानी उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे सारे काम बनाएगा, इत्तकुल्लाह में खौफ दिलाया और अमर बित तवक्कुल में, यानी तवक्कुल का हुक्म जो फरमाया ना, अमर बित तवक्कुल, तवक्कुल का हुक्म में उम्मीद, वहां पे खौफ यहाँ पे उम्मीद, ठीक है। और यही दो अमल मुईन इम्तिसाल है, जब खौफ होता है कि अगर नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी, पिटाई होगी, मदद नहीं मिलेगी, इसको खौफ कहते हैं। ये खौफ भी इंसान को जो है ना वो चला के रखता है, खड़ा करके रखता है। और एक है उम्मीद कि अल्लाह ताला मदद करेंगे, अल्लाह ताला मदद करते हैं, बल्कि ठीक है पहले भी किया था, आज भी जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अल्लाह की मदद ही से कर रहा हूं, अपने बलबूते पे नहीं कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला आज भी मदद कर रहे हैं, और जो चीजें मैं आइंदा करना चाहता हूं अल्लाह की रजा के मुताबिक, अल्लाह ताला उसमें भी मदद करेंगे, माजी हाल और मुस्तकबिल, ठीक है। तो ये फिर उम्मीद होती है और ये भी इंसान को अमल पे चलाती है, ठीक है, इम्तिसाल में, फरमानबरदारी में मुआविन है ये। और अल्लाह ताला ने, अच्छा अब यहां पर जो है वो फिर बनी इसराइल का जिक्र शुरू हुआ है, जो कि फिर वही बात, कुदरत नाथ सुबह की क्लास के अंदर भी बनी इसराइल के ऊपर काफी सारी बात हुई थी, देखें याद भी अगर हो सके। फरमाते हैं वलकद अखदल्लाहु मीसाक बनी इसराइला, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से बनी इसराइल से भी अहद लिया था, ठीक है, यानी डायरेक्टली बनी इसराइल से खिताब नहीं फरमाया था बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि ऐसा ऐसा है, अल्लाह ताला से कहो, और बनी इसराइल ने इसका यानी अहद किया था अल्लाह ताला से कि हाँ हम मानते हैं इस बात को, जिसका बयान अनकरीब आता है, यानी इसी सूरह मायदा के अंदर आगे इसका तस्करा आएगा। और इन उहूद की ताकीद के लिए हमने उनमें से मवाफिक अदद उनके कबाइल के 12 सरदार मुकर्रर किए थे, ठीक है। तो बनी इसराइल के 12 कबीले थे जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलादें थी, ठीक है। तो मवाफिक अदद हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे लिखा है, तो इससे तो बजाहिर ऐसा लगता है कि जो टोटल नंबर ऑफ बनी इसराइल थे, जो कि किताबों में लिखा 6 लाख तादाद बन चुकी थी उस जमाने में बनी इसराइल की, तो उनको जो है वो डिवाइडेड बाय 12, तो जितना नंबर बनता था एक का तो वो उसके ऊपर एक नकीब मुकर्रर कर दिया था, ठीक है। लेकिन दूसरे जराये से तो यही समझ में आता है कि असल में ये मवाफिक अदद नहीं थे बल्कि ये मवाफिक सलब थे, यानी जो जिसकी सलबी औलाद थे ना, जिस याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे की, तो उनका एक कबीला इस बुनियाद पे बना था। बहरहाल हो सकता है मुफ्ती थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर ये मुराद ना हो, हमें तो ये समझ में आया, लेकिन हो सकता है ये मुराद ना भी हो। बहरहाल तो उन्होंने लिखा कि मवाफिक अदद उनके कबाइल के 12 सरदार मुकर्र किए, या ये कि इसका मतलब ये है कि 12 कबीले थे तो 12 सरदार मुकर्र किए, हाँ बल्कि यही है एक्चुअली, यही सादा सा सिंपल सा सही एक्सप्लेनेशन है, चूंकि 12 कबीले थे इस वजह से 12 सरदार मुकर्र किए, तो ये मवाफिक अदद हो गया कि हर हर कबीले पर एक एक सरदार रहे जो अपने मातहतों पर हमेशा ईफाए उहूद की ताकीद रखे, ठीक है। माशाल्लाह हमारे छोटा सा एक प्रोग्राम वगैरह आपने किया था अभी, जो लोग आप में शामिल थे उनको पता है कि उसमें टीम गेम्स हुए थे, ठीक है। तो हर टीम के ऊपर जो है वो एक टीम लीड बनाया गया था, ठीक है। तो टीम लीड का काम क्या था कि जी वो इंस्ट्रक्शंस को लेगा और अपनी टीम को जो है वो समझाएगा, बताएगा और फिर उनको उनकी निगरानी करेगा ताकि टीम जो है वो कामयाब रहे,
कामयाब हो जाए। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि इंसानों को जो है वो एक लीडर की जरूरत होती है, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने भी इनके दरमियान 12 सरदार मुकर्रर किए। अच्छा, और ये मूसा अलैहिस्सलाम से इंस्ट्रक्शंस लेते थे और उनकी याद दहानी कराते रहते थे अपने कौम को, ईफाए अहद की ताकीद करते रहते थे। और मजीद ताकीद अहद के लिए उनसे अल्लाह ताला ने यूं भी फरमा दिया कि मैं तुम्हारे पास हूं, वकाल अल्लाह इन्नी माअकुम, यानी तुम्हारे बुरे भले की सब मुझको खबर रहेगी। मतलब यह है कि अहद लिया, फिर उसकी ताकीद दर ताकीद फरमाई, और इस अहद का खुलासा मजमून ये था। ठीक है, यानी ये जो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे पास हूं, यानी ये नहीं है कि मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट तुमसे साइन करवा लिया, अब मैं तुम्हारे हवाले करके मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूँ जी अपने फरिश्तों के साथ अपने अर्श के ऊपर, वहां बैठ करके मैं वहां पे उनके साथ बातचीत करता रहूंगा, यू आर ऑन योर ओन, गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बाद में जब मर मर करके मेरे पास आओगे फिर मैं तुम्हारे नामे अमाल को खोलूंगा, उसको पढ़ूंगा, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है, ऐसा हरगिज हरगिज नहीं, बल्कि इन्नी माअकुम, मैं अपने मुकम्मल इल्म के साथ और मुकम्मल कुदरत के साथ तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूं। फिजिकली साथ के ऊपर अहले सुन्ना वल जमात का इत्तेफाक नहीं है, फिजिकली अल्लाह ताला की जो प्रेजेंस है वो अर्श के ऊपर है। अभी एक अलग अकीदे वगैरह की सारी तफसील है कि अर्श के ऊपर अल्लाह ताला मौजूद है, ठीक है, इस्तवा अल अर्श, लेकिन हर जगह पे मौजूद है। कैसे भाई? अल्लाह ताला देख रहे हैं हर जगह पर, अल्लाह ताला सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हर चीज की हकीकत से वाकिफ है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ करके नहीं गए हुए हैं अल्लाह ताला, उसी तरीके से जिस तरह तुम्हें नहीं छोड़ के गए यानी बनी इसराइल को, उसी तरह हमें भी तो नहीं छोड़ के गए ना यार। ठीक है, हम भी इसी आजकल मखमसे के अंदर हैं, नऊज बिल्ला, अल्लाह ताला जो है ना वो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, रिटायर हो गए हैं या चले गए, छोड़ छाड़ करके अब हमें हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नहीं हुआ और ना आइंदा कभी होगा, ना इस वक्त ऐसा है। तो अब जो है वो आगे फरमाया कि इस अहद की तफसील क्या थी, लइन अकम तुम सलाता, कि अगर तुम नमाज कायम करो, अगर तुम नमाज की पाबंदी रखोगे और जकात अदा करते रहोगे, वो तई तुम उस जकाता, और मेरे सब रसूलों पर जो आइंदा भी नए नए आते रहेंगे ईमान लाते रहोगे, वो आमन तुम बिरुसुली, ठीक है, वो अज़र तुम, और दुश्मनों के मुकाबले में उनकी मदद करते रहोगे, वो अकरद तुम अल्लाह कर्दन हसना, और अलावा ज़कात की, यानी ज़कात का तो पीछे जिक्र हो चुका ना, अब किसकी बात कर रहे हैं, ज़कात के अलावा और मसारिफ़ खैर में भी सर्फ करके, जैसे मस्जिद बनाना, अब मस्जिद बनाने के अंदर तो ज़कात इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ठीक है, मदरसा बनाना, ज़कात वहां इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो अब ये कैसे मदरसा बनेगा, अब ये मस्जिद कैसे बनेगी, ठीक है, खुद ब खुद बन जाएगी, ये जिना आकर के बनाएंगे, ये फरिश्ते आकर के बनाएंगे, नहीं, ये मुसलमान बनाएंगे, राइट, तो वो कहां से पैसा लेकर आएंगे, जकात तो लगा ही नहीं सकते इधर, तो फिर कौन सा पैसा, अल्लाह ताला को कर्ज देंगे, ठीक है ना, यानी जिसको के नफली सदका कहा जाता है। और कर्ज तो लौटाना इतना अहम है कि नबी अलैहिस्सलाम, कर्ज जिसके ऊपर होता था वो मर जाता था उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, ठीक है ना, ये भी फरमा दिया कि शहीद हो गया अगर मैदान जंग के अंदर, सब गुना माफ हो जाएंगे सिवाय कर्ज के। क्या मतलब, कर्ज लेना गुनाह नहीं है, वही बात है ना, हदीस तो सुन ली, मतलब क्या है इसका, क्या कर्ज लेना गुनाह था, नहीं, कर्ज लेना गुनाह नहीं है, फिर क्यों फरमाया कि सारे गुना माफ हो जाएंगे सिवाय कर्ज के, मतलब इसका ये है कि ये नहीं होगा कि आपने पूरी जान दे दी है अपनी अल्लाह के रास्ते में, अब जो है ना वो जिससे आपने कर्ज दिया था वो कहे कि यार बस ठीक है ना, इन्होंने अल्लाह के लिए जान दे दिया ना, अब मैं अपना कर्ज माफ कर देता हूँ इसको, ये अल्लाह का हुक्म है कि मैं इसका कर्ज माफ कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्ज तो फिर भी कायम रहेगा आपके ऊपर, और वो अदा करना पड़ेगा, आपके वारिस अदा करें या कोई और अदा करें, लेकिन करना पड़ेगा। तो ये अदायगी इतनी अहम है कर्ज की कि मुसलमानों के साथ ये मामला किया तो फिर अल्लाह ताला खुद कर्ज अदा नहीं करेंगे क्या? ठीक है, तो अल्लाह ताला के पास तो खजाने भी ऐसे, और अल्लाह ताला तो यानी खयानत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कर्ज अदा कर वापस लौटाते हैं, और वो कैसे लौटाते हैं, जन्नत की नेमतों की शक्ल में लौटाते हैं, दुनिया के अंदर मदद की शक्ल में लौटाते हैं, दुनिया के अंदर दिल के इत्मीनान की शक्ल में लौटाते हैं। ठीक है, इतना लंबा सा सवाल लिख दिया भाई, ये तो क्लास में लिखने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बाद में शायद आपका। ओ फिर तो बिल्कुल से रिलेटेड है। If we say, अच्छा, one of my friends asked me something that I didn't know how to answer. He said, if we say that true tawakkul means complete reliance on Allah, then how is that different from just having strong iman? Because if someone truly believes in Allah's qadar and wisdom, wouldn't tawakkul automatically follow from iman? And if it doesn't, does that mean a person's iman is incomplete? So, is tawakkul a separate act of the heart? Or simply a manifestation of iman itself? And if it's a separate state, what's the theological distinction between believing in Allah's power and relying on Allah's power? How should I answer him properly? आपके दोस्त साहब जो है ना, ये लगता है कुछ कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी पढ़ ली है उन्होंने, ठीक है, और कुछ ज्यादा ही उन्होंने सेल्फ स्टडी जो है वो कर ली है, और जाहिर है कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था, तो अब इस किस्म के सवाल उनके जहन में आ रहे हैं, वसवसे हैं या बस, ठीक है। तो आंसर तो इसका बड़ा आसान है, बल्कि आप यू शुड बी एबल टू आंसर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम आपको भी जानते हैं, राइट, तो आपसे तो बड़ी बातें हुई हैं, ईमान क्या होता है, तो वाई शुड वाई आंट यू एबल टू आंसर टू हिम कि व्हाट इज ईमान एंड व्हाट इज तवक्कुल, ठीक है, यू शुड बी एबल टू आंसर हिम एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर हम बाकी लोगों को भी पढ़वा दें, माइंड तो नहीं करेंगे, किसी को पता तो नहीं चलेगा कि ना आपने सवाल लिखे। चले जाए, सवाल मैंने पढ़ के सुना दिया, बाकी सबने भी सुन लिया होगा। तो भाई, ईमान जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद का नाम होता है ना, ठीक है। अब असल में पता है क्या मसला है, मेरा ख्याल ये, कल कुदरतन एक भाई से बात भी हो रही थी इसी के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। नॉट दैट उनका कोई कसूर है इसमें, ठीक है, कसूर हमारा है कि हम इल्म हासिल नहीं करते, ठीक है। असल में जो लफ्ज ईमान है ना, ईमान खराब हो रहा है, ईमान खराब हो रहा है, ईमान खराब हो रहा है, ठीक है, और ईमान का मसला पड़ गया है, ठीक है ना। ये जो हमारे इस वक्त जो दीनी हलकों के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा होता है ना, ईमान का मसला पड़ गया है, ईमान खराब हो रहा है, ठीक है, और तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दरअसल ईमान की कमजोरी के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गुनाहों की वजह से होती है, ठीक है, ईमान की कमजोरी के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, जिस जो कि गुनाहों की वजह से होती है, ठीक है। तो ये खुसूसन तबलीगी जमात की जो हमारी जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, तालीम होती है, तो उसके अंदर ईमान का लफ्ज इसी इसी इसमें ना, ठीक है। तो अब जो है ना, वो वी डोंट, मतलब हम ईमान को, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे अकाबरीन भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं और किताबों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई, किताब में जो लिखा होता है, जिसको कि तालीम में पढ़ लेते हैं, तो अगर किताब का लिखा हुआ काफी होता बात को समझने के लिए, तो फिर वही बात आती है ना कि रसूलों की क्या जरूरत थी, राइट, और रसूलों के जाने के बाद उस्तादों की क्या जरूरत थी, आलिम की क्या जरूरत थी, अगर किताब में जो लिखा हुआ है वो काफी होता बात को समझने के लिए, वो तो काफी नहीं होता ना। अब जब तालीम हो रही होती है, तो तालीम के अंदर तो किताब को बस आप ऑडियो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है, जब तालीम हो रही होती है तबलीग जमात की, तो उसमें क्या 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 किया जा रहा होता है, क्या उसमें बाकायदा दर्स दिया जा रहा होता है, समझाया जा रहा होता है कि ईमान होता क्या है, ईमान का लफ्ज का मतलब क्या है, ईमान की खराबी क्या चीज होती है, ईमान का खत्म हो जाना क्या चीज होती है, ये सब कुछ तो नहीं हो रहा होता ना तालीम के अंदर। तो भाई, वो तो एक दूसरे मकसद से एक तालीम हो रही होती है, चलो भाई निकलो अल्लाह के रास्ते में निकलो, ठीक है ना, जमात की शक्ल में निकलो, माहौल में रहो, ठीक है, तो नेकियां करनी आसान हो जाएंगी, गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा वगैरह, ठीक है। तो वो तो बेसिकली जस्ट कन्वर्टिंग टेक्स्ट इंटू ऑडियो, दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग, ठीक है ना। तो अब जो है ना, वो जो समझने के लेवल पे नहीं जाते हैं, उस्ताद से उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता है, तो अब ये सुन सुन करके ना, वो ईमान को कुछ ऐसी चीज समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई ईमान मजबूत होना और तवक्कुल होना जो है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, और ये यानी ये कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाती है। तो मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये दीन को सीखने का तरीका नहीं है,
ये दीन को सीखने का तरीका नहीं है कि हम किताब को सुन लें या किताब को पढ़ लें, इससे नहीं दीन आता।
ठीक है, तो भाई ईमान को तो क्लियर समझाएं, खुद भी समझें कि नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर एतमाद करना ये ईमान है, ठीक है। और तवक्कुल जो है वो दिल के अंदर इस बात का एहसास होना कि अल्लाह ताला मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ना एक कैफियत है तवक्कुल। ईमान क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन है या इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस है। दिमागी तौर पर आपने एग्री कर लिया, जुबान से इसका इजहार कर दिया, ठीक है, कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल सच है। लेकिन भाई किसी चीज को सच कह देना और फिर उसके मुताबिक अमल अमल भी करना, हत्ता कि अगर कोई मुश्किल सिचुएशन भी आ जाए तो उस वक्त भी उसके मुताबिक अमल करते रहना, ये इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन से नहीं होता ये सब कुछ। इसके लिए तो आपको कैफियात की जरूरत पड़ती है, मोहब्बत की, खशियत की, तवक्कुल की, ठीक है। तो ये तवक्कुल इज नॉट इक्वल टू ईमान, तवक्कुल इज नॉट इक्वल टू ईमान। तवक्कुल तो उसके ऊपर बिल्ड होने वाली है चीज है ना, ठीक है, जो कि बाद में बिल्ड होती है। मोहब्बत भी बाद में बिल्ड होती है, खशियत भी बाद में बिल्ड होती है, तवक्कुल ईमान के ऊपर बिल्ड होती है। उसी तरह तवक्कुल भी ईमान के ऊपर बिल्ड होता है, ये एक इमारत है जो कि ईमान की फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, और भी बाद में बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पे आगे चल रहे हैं कि अल्लाह ताला को अच्छे तौर पर यानी इखलास के साथ कर्ज देते रहोगे तो मैं जरूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर दूंगा। यानी ये चीजें तुम करते रहोगे, नफली सदके भी करते रहोगे, फराइज वाले सदके भी, फर्ज सदका भी तुम करते रहोगे, और नमाज और रोजा भी करते रहोगे, और नबी अलैहिस्सलाम और नबियों के पर एतमाद भी करते रहोगे और नबियों की मदद भी करते रहोगे, ठीक है। अब ये नबियों की मदद करने का मतलब और मौकों पे काफी जो है हम बात कर चुके हैं, नंबर भी फिलहाल आगे चलते हैं कि फिर क्या होगा कि मैं जरूर तुम्हारे गुनाह से तुमसे दूर कर दूं, ठीक है। यानी ये सब काम करने के बावजूद भी तुम इंसान ही रहोगे, तुम फरिश्ते नहीं बन जाओगे, ठीक है। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, जकात भी दे रहे हो, तुम जो है वो नबियों पर एतमाद भी कर रहे हो कि वो सच बोलते हैं, हर चीज उनकी सच्ची है, ठीक है। तुम उनकी मदद भी करते हो उनके दुश्मनों के खिलाफ, मुश्रिकीन, काफिरीन, उनकी तदबीरें, सबके खिलाफ तुम उनकी मदद भी करते हो, तुम अल्लाह ताला को कर्ज हसना भी देते हो, लेकिन फिर भी तुम इंसान ही रहोगे, फिर भी तुम फरिश्ते नहीं बन जाओगे। क्या मतलब? तुमसे फिर भी गलतियां होंगी, फिर भी तुमसे गलतियां होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे लिए हम ये सारी तो हम तो भाई क्या कर रहे हैं, रसूल हैं भी नहीं, और रसूलों के जो रसूल होते हैं हम तो उनके साथ भी कोई हमारा ताल्लुक नहीं होता, तो उनकी क्या मदद करें। अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह ताला ने मशाइख की बरकत से कुछ सिस्टम वगैरह बनाया है कि हमें रसूलों के रसूलों के रसूलों के रसूलों के रसूलों के रसूलों 40-50 जनरेशन के बाद है हमारे पास कुछ उलमा कुछ मशाइख है तो हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे, ठीक है। तो फिर अब हमारे लिए तो चूंकि हम तो इस सिस्टम के अंदर हिस्सा नहीं होते, तो फिर हम क्या, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है? इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हमारे लिए कम से कम ये निकल सकती है कि देखें इतनी नेकियां करने वाले, अल्लाह ताला के शर्तों को पूरा करने वाले, इवन दे कैन नॉट बिकम परफेक्ट, ठीक है ना। वो भी परफेक्ट नहीं हो सकते, उनसे भी गलतियां होंगी, गलतियां कंटिन्यू होती रहेंगी, ऐसे लोगों से भी। तो फिर हम आपस में एक दूसरे से परफेक्शन की उम्मीदें क्यों लगा के रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स क्यों लगा के रखते हैं, ठीक है। शौहर जो है वो बीवी से परफेक्ट होने की डिमांड रखता है, बीवी जो है वो शौहर से परफेक्शन की डिमांड रखती है, और गलती को माफ नहीं करना हम जानते हैं, ठीक है ना। नहीं, तुमने गलती की कैसे, गलती तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये गलती तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। ये गलतियां जो है वो ऐसे लोगों से भी होंगी ना, जभी तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि लअकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतकुम, जरूर बिल जरूर मैं तुम्हारे सय्यिआत को यानी तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी गुनाहों को माफ कर दूंगा, ठीक है, तुमसे मिटा दूंगा, की होंगी तो मिटाऊंगा ना, अगर फरिश्ते बन जाते तो कौन सी गलतियां अल्लाह ताला मिटाएंगे। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल्अनहार, ठीक है। तो दुनिया में तो तुम्हारे गुनाह तुमसे
मिटाए जाएंगे, तो उसके बदले में तुम्हें दुनिया के अंदर एक छोटी सी जन्नत मिलेगी, दुनिया में जन्नत मिलेगी, ठीक है, दिल का इत्मीनान, सुकून, ये सब तुम्हें साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है, गुनाह करते भी रहोगे, मिटते भी रहेंगे, सुकून भी साथ साथ तुम्हारा चलता रहेगा, और फिर जब मर जाओगे तो उसके बाद फिर तुम्हें हमेशा हमेशा वाली जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा कि जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। तो जो फरमाते हैं, और जो शख्स इस अहद पैमान लेने के बाद भी कुफर करेगा तो वो बेशक राह रास्त से दूर जा पड़ा, ठीक है, यानी फमन कफरा बाद अजालिका, क्या मतलब, अहद पैमान ले लिया उसने और जो है वो फिर उसने इनकार कर दिया कि नहीं नमाजें क्या नहीं पढ़ता मैं नमाजें, क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं होता नमाजें ना पढ़ने से, ठीक है, तो ये तुमने इनकार किया, वादा तुमने किया था ना, तुमने इसका इनकार कर दिया, या रसूल के ऊपर एतमाद का तुमने इनकार कर दिया, या तुमने जो उनकी मदद का, नहीं नहीं मैं आपकी मदद नहीं करता, तो फिर क्या होगा, वो वल्ला वो हटक गया सीधे रास्ते से। कोई सवाल पूछता हूँ तो पूछ लीजिए, और आपने जो इतना लंबा सा सवाल किया था इसके जवाब के बदले में कोई सवाल मजीद हो, काउंटर क्वेश्चन, तो वो भी आप बिना करो कर लीजिएगा। मारिफ व मसाइल में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, टाइम थोड़ा सही रह गया, कि सूरह मायदा की 7वीं आयत जो पहले गुजर चुकी है उसमें हक तआला ने मुसलमानों से एक अहद मीसाक लेने और उनके मानने और तस्लीम करने का जिक्र फरमाया है, ठीक है, वो खास नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुसलमानों की बात हो रही थी। वस्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम व मीसाकहु अल्लज़ी वाथककुम बिही, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का जिक्र हो रहा था। इज़ कुल्तुम समिअना व अतअना, जब तुमने कहा कि हमने सुन लिया और हमने हमने मान लिया, अतात करी, वत्तकुल्लाह और अल्लाह ताला से डरो, ये मीसाक खुदा और रसूल की अतात और अहकाम शरईया के इत्तेबा का मीसाक है, यानी मुआहिदा है, जिसका इस्तेलाही उन्वान टाइटल, ठीक है, इस मुआहिदे का जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम ने किया और बाद में आने वाली पूरी उम्मत करती है, ठीक है, और हमें भी करना चाहिए अगर हम उस उम्मत का हिस्सा बनना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, हमें भी ये मिसाल करना है। तो अब इसका टाइटल क्या है, उन्वान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हर कलमा गो मुसलमान इस मिसाक का पाबंद है, यानी जो कलमा पढ़ता है वो इस मिसाक का पाबंद, ठीक है, कोई कहे कि नहीं मैं कलमा ही नहीं पढ़ता, मेरे तो अब्बू मुसलमान थे इस वजह से मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, या तो मैं तो सो कॉल्ड मुसलमान कंट्री के अंदर पैदा हुआ था इस वजह से मैं मुसलमान हूँ, कलमा उलमा पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, वो मुसलमान नहीं है, वो अब्बू अम्मी की वजह से कोई मुसलमान नहीं होता, ठीक है ना, कंट्री और ट्राइब की वजह से कोई मुसलमान नहीं होता, मुसलमान तो कलमे की वजह से होता है, और कलमा पढ़ लिया अब क्या है, अब जन्नत के लिए फंस गए, राइट, हम ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप फंस गए, बल्कि जन्नत के लिए फंस गए, अब जहन्नुम में इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है ना भाई, जन्नत के लिए फंस जाना, चाहे हमें बुरा लगे कि क्यों पता आप फंस गए, भाई जन्नत के लिए फंस गए, जहन्नुम से बच गए, बहरहाल, तो अब हर कलमा गो मुसलमान इस मिसाक का पाबंद है। इसके बाद की आयत में मिसाक की बाज़ अहम दफात यानी खास खास अहकाम शरईय का बयान फरमाया है जो कि हमने पीछे पढ़ लिया, जिसमें दोस्त दुश्मन सब के लिए अदल इंसाफ के कयाम की और इख्तदार पाने के बाद दुश्मनों से जज्बा इंतकाम की बजाय इंसाफ और रवादारी की तालीम दी गई है, ये मीसाक खुद भी अल्लाह ताला का एक बड़ा इनाम है, इसीलिए उसको उज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम से शुरू किया गया है, ठीक है, तो उस मीसाक की कुछ शिकें जो हैं वो पीछे की आयत में हमने पढ़ ली थी, आयत नंबर 10 और 9 और 8 वगैरह के अंदर, ठीक है, तो अब उसके बाद नेमतुल्लाह के जरिए से उसको फिर अल्लाह ताला ने याद दिलवा दिया दोबारा से, उस गुरु नेमतुल्लाह अलैकुम। अच्छा फिर आगे क्या हो रहा है, आयत मज़कूरा को फिर उसी जुमले उस गुरु नेमतुल्लाह अलैकुम से शुरू करके ये बतलाना मंजूर है कि मुसलमानों ने अपने इस अहद मीसाक की पाबंदी की तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत में कुव्वत और बुलंदी और दर्जात आलिया अता फरमाए और दुश्मनों के हर मुकाबले में उनकी इमदाद फरमाई, दुश्मनों का काबू उन पर नहीं चलने दिया, जब इंतहाई कमजोर थे उस वक्त भी नहीं चलने दिया, जब उससे ज्यादा मजबूत हो गए उस वक्त भी नहीं चलने दिया, हालांकि जो उनके दुश्मन थे वो पहले भी उनसे ज्यादा मजबूत थे और बाद में भी जाके उनसे ज्यादा मजबूत रहे, ठीक है, हत्ता के फिर थोड़ी थोड़ा सा वक्त आया कि जिसके अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम की ताकत जो है वो तकरीबन बराबर होनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर के ऐसा वक्त आया, ठीक है, वरना बड़े लंबे अरसे तक हमेशा ही गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के ऊपर ही ज्यादा मजबूत रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी एक मौका ऐसा आया था, गज़वा ये फतह मक्का के बाद, गज़वा हुनैन के अंदर ना, जिसमें कि मुसलमानों की तादाद गैर मुस्लिमों से पहली दफा जो है वो ज्यादा हो गई थी, और वही शायद आखिरी दफा भी थी, लेकिन उसमें भी फिर क्या अल्लाह तआला ने मुसलमानों को सिखलाया, अच्छा कि अल्लाह की तरफ तुम्हारी नजर हट गई ना, अब तुम ज्यादा होने के बावजूद पिटोगे, ठीक है। तो यही हुआ गज़वा हुसैन के अंदर, हुनैन के अंदर भी, कि किसी से एक जुमला निकल गया, गलती हो गई उससे, लेकिन दूसरों ने उसको मना नहीं किया, उसको टोका नहीं, उसको रोका नहीं, बस ये जो है वो पूरी जमात के लिए जो है वो एक सजा बन गई। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन जो उस दिन मुसलमानों के साथ की गत बनी है, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल फरमाया, वहीं पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल फरमाए, और फिर मुसलमानों की शिकस्त जो थी वो फिर फतह के अंदर तब्दील हो गई। लेकिन ऐसा है अल्लाह का मामला, ठीक है, कि अल्लाह की तरफ से जरा सी नजर हटती है फौरन आती है फिर उसके बाद पकड़। तो अल्लाह ताला ने लेकिन बाकी सारे मामलात के मौकों के ऊपर मुसलमानों की मदद फरमाई और दुश्मनों का काबू उन पर नहीं चलने दिया। इसमें भी इन दी एंड तो काबू नहीं चला उनका, ठीक है, उहद में भी बजाहिर शिकस्त हुई, लेकिन इन दी एंड काबू तो नहीं चला ना, वो फिर भी चले गए, ठीक है। और इसी तरह हुनैन वगैरह के अंदर भी बिलाखिर मुसलमानों ही का सिलसिला हाथ गालिब रहा। इस आयत में खास तौर पर इसका जिक्र है कि मुसलमानों ने बारहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दुश्मनों ने बारहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मिटा देने और कत्ल व गारत कर देने के मंसूबे बनाए और तैयारियां की, मगर अल्लाह ताला ने सबको खाइब व खासिर कर दिया। इरशाद है कि एक कौम उस फिक्र में थी, इस फिक्र में थी कि तुम पर दस्तराजी करे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, ठीक है। मजमू हैसियत से तो ऐसे वाकया तारीख इस्लाम में बेशुमार हैं कि कुफार के मंसूबे फजल खुदाबंदी से खाक में मिल गए, लेकिन बाज खास खास अहम वाकयात भी हैं जिनको हजरात मुफस्सरीन ने इस आयत का मिस्ताक करार दिया है, यानी शान नुजूल जो है ना वो इस आयत का, वो ये खास खास वाकयात थे। एक वाकया भी हो सकता है, एक से ज्यादा वाकयात भी हो सकते हैं, क्योंकि एक आयत जो है वो कई बार भी नाजिल होती थी, कोई दोबारा इस तरह का वाकया पेश आता था फिर वही आयत अल्लाह तआला नाजिल फरमा देते थे। मसलन मसनद अब्दुलरजाक हज जावेद अदान से रवायत, अच्छा ये फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म हुए, 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये फिर वाकयात वगैरह खास क्लास में, ठीक कोई सवाल वगैरह अगर। सवाल मैं जवाब फिर पढ़ रहा हूँ, हजरत लगुकफरन सयातुकुम से मुराद छोटे गुनाह का माफ होना है, क्योंकि कबीरा गुनाह तो बगैर तौबा के मुआफ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इनका अच्छा सवाल है, रिलेटेड डेफिनेटली टू दी आयत, कि अगर तुम ऐसे नेकियां करते रहोगे तो लगुकफरन सयातुकुम, ठीक है, कि तुम्हारे अल्लाह ताला गुनाह मिटाते रहेंगे। तो ये बात बेशक ऐसी ही है, और उलमा ने ऐसे ही समझा है और ऐसे ही हमें समझाया है, कि जब भी इस तरह की बात आती है ना कि नेकियां करने से गुनाह माफ होते हैं, तो वहां पर दरअसल सगीरा गुनाहों की बात हो रही है, ठीक है, कबीरा गुनाहों की बात नहीं हो रही होती। और ऐसा ही है क्यों, इसलिए मतलब इसके ऊपर मुख्तलिफ दलाइल दिए जा सकते हैं। एक तो ये कि यहां पर सहाबा कराम की बात हो रही है, ठीक है ना, या अय्युहल लजीना आमनू, तो भाई जो वहां मौजूद ईमान वाले थे कुरान के नुजूल के वक्त, वो कौन थे, वो सहाबे कराम थे। तो सहाबे कराम का तो मामला कंफर्म है कि उनसे तो कबीरा गुनाह होते ही नहीं, मतलब वो करते ही नहीं थे, ये नहीं कि होते नहीं थे, नहीं करते ही नहीं थे, ठीक है ना, वही बात या वो क्या है, वो कल ही जो आयत पढ़ रहे थे यार, ठीक है, वकर रहा इलैकुम कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, वो तो कराहत करते थे, कराहियत करते थे ना कुफ्र से, फिस्क से और इसयान से। और अगर उनसे कभी किसी से कबीरा गुना हो गया, वो फौरन तौबा कर लेते थे, ठीक है। तो फिर यहां पे लउकफ्फिर अनकुम सय्यातिकुम, भाई कबीरा गुना तो जीरो थे उनके, अगर हो गया तो भी जीरो हो गया फौरन से, ठीक ठीक है, तौबा करने के बाद फौरन जीरो हो गया। अब यहाँ पे कौन से लव कफर अनकुम सही आते हैं, सगीरा ही रह गए ना खाली। ठीक है, बाकी ये कि सहाबा कराम की जनरेशन खत्म हो गई, और कर रहा इलैकुम कुफ्र व फुसूक वाले इसयान वाले जो है वो कैफियत, उसमें भी कमी आती गई कमी आती गई। तो फिर बाद की जनरेशन के अंदर सगीरा गुना तो होते ही हैं, वो तो सहाबा से भी हो जाते थे, बाद में भी लोगों से हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कबीरा भी होने शुरू हो गए थोड़ा थोड़ा करके, हफ्ता के बाद में बढ़ते भी चले गए, लेकिन साथ साथ जो है वो नमाजें भी चल रही हैं, जकात भी चल रहा है चल रही है, और ईमान भी चल रहा है, मदद भी चल रही है, सदके भी चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि लौकफ़िरा अनकुम सय्यातकुम के अंदर तौबा की तौफीक मिल जाएगी। ठीक है, तौबा की तौफीक मिल जाएगी उन लोगों को जिनसे कबीरा भी हो गए, उनको तौबा की तौफीक मिल जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, तौबा की तौफीक मिल गई लौकफ़िरा अनकुम सय्यातकुम। ठीक है, लेकिन जो सहाबा के जैसा बनता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब बिल्कुल बंद हो गया रास्ता, कि नहीं अब तुम सहाबा के वाली कैफियत तुम्हारे दिन में नहीं आ सकती, ऐसा तो नहीं है ना भाई। जो मेहनत करेगा, तज़किया नफ्स करेगा, इस्लाह के रास्ते के ऊपर अब कुर्बानियां देगा, उसके अंदर भी ऐसी कैफियत आ जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत तो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम ये उसमें भी आ जाएगा, कर्रह इलैकुम कुफ्र व फुसूक वल इस्यान ये उसमें भी आ जाएगा। तो ऐसे लोग जन उम्मत के अंदर बाद में भी चलते रहे और आज तक चलते रहेंगे जब तक ईमान खत्म नहीं हो रहा था दुनिया के अंदर, जो कि कबीरा से जीरो जीरो कबीरा के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। ठीक है, तो उनके फिर वही फिर यहाँ पर वही सगीरा गुनाह वाला मामला होगा जिसको कि अल्लाह ताला मिटाते रहे। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं।